दिन भर तारीख 13 जुलाई दिन बुधवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अरुणाचल प्रदेश में बहाल होगी कांग्रेस की सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल ने किया शक्तियों का दुरुपयोग। कपिल सिब्बल बोले
गवर्नर को बर्खास्त किया जाए। दूसरी हम मांग करते हैं जो भी केंद्र के मंत्री इस निर्णय में शामिल थे वो अपनी सफाई दें और अपोलोजाइज भी करें।
भारत प्रशासित कश्मीर में शहीद दिवस पर रैली का आह्वान करने वाले अलगाववादी गिरफ्तार। दुनिया जहान में चर्चा अमेरिका में काले और गोरों के बीच बढ़ती नस्लवादी हत्याओं की।
200 से ज्यादा मैथ शूटिंग्स हुए हैं अमेरिका, तकरीबन 500 लोग मारे गए, इसमें ज्यादातर मैथ शूटर्स वाइट लोग।
खबरें और भी लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश दिया है। इसे केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा धक्का माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9 दिसंबर से राज्यपाल ने जो भी फैसले किए उन्हें रद्द किया जाए। हफ्तों तक चले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद फरवरी में भाजपा की मदद से कांग्रेस के बागी विधायकों के नेता कलिको पुल ने अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन आज अपना पद छोड़ रहे हैं, जिसके बाद टेरिजा मे देश की नई प्रधानमंत्री होंगी। बतौर प्रधानमंत्री आखिरी बार कैमरन ने आज संसद की कार्यवाही में हिस्सा लिया और इसके बाद वो बकिंगम पैलेस जाकर महारानी एलिजाबेथ को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कैमरन 6 साल से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हालिया जनमत संग्रह में जब ब्रिटेन की जनता ने यूरोपीय संघ से बाहर जाने का फैसला किया तो कैमरन ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। टेरिजा मे ने कहा है कि यूरोपीय संघ की सदस्यता पर दोबारा जनमत संग्रह वो नहीं चाहतीं। उधर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जॉन क्लोद यूंकर ने उम्मीद जताई है कि ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री के साथ ईयू के रिश्ते सकारात्मक होंगे।
I'm not giving public advices to the incoming British Prime Minister.
मैं नई ब्रितानी प्रधानमंत्री को सार्वजनिक सलाह तो नहीं दे रहा हूं। मैं उन्हें उपदेश नहीं देना चाहता। उनसे बात करने से पहले मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके साथ हमारे रिश्ते सकारात्मक हों। ये थे जॉन क्लोद यूंकर के शब्द। चीन ने चेतावनी दी है कि वो साउथ चाइना सी में एयर डिफेंस जोन बना सकता है। चीन का ये बयान इस क्षेत्र में चीन के दावों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद आया है। एयर डिफेंस जोन का मतलब है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले विदेशी विमानों को चीनी अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। उधर चीन ने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में वहाँ 2 सिविलियन विमान भेजे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जापान के सरकारी मीडिया का कहना है कि सम्राट अकीहितो ने आने वाले वर्षों में राजगद्दी से हटने की इच्छा जताई है। 82 वर्षीय जापानी सम्राट की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनके राजगद्दी से हटने के बाद उनके बेटे और युवराज नारुहितो जापान के सम्राट बनेंगे। सम्राट अकीहितो ने 1989 में अपने पिता हिरोहितो का स्थान लिया था। इराक की राजधानी बगदाद में हुए एक आत्मघाती हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि राशिदिया इलाके में विस्फोटकों से भरी कार को चेक पॉइंट पर हमलावर ने उड़ा दिया। बीते 24 घंटों में ये बगदाद में ऐसा दूसरा हमला है। और जर्मन सरकार ने कुछ रणनीतिक बदलावों का प्रस्ताव किया है, जिसके बाद विश्व में जर्मनी की भूमिका बढ़ सकती है। जर्मन सरकार की रक्षा नीति समीक्षा में ये बात कही गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। दिनभर कार्यक्रम की शुरुआत आज भारत से करते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में बनी कलिखो पुल की सरकार को असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में 15 दिसंबर 2015 से पहले की स्थिति बहाल होगी। इसका मतलब ये है कि राज्य में कांग्रेस की सत्ता की फिर से वापसी होगी। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया और 5ों सदस्य इस फैसले को लेकर एक मत थे। अदालत ने क्या फैसला दिया और इसे लेकर किस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बयानबाजी हो रही है, सुनिए बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 की स्थिति बहाल की जाए। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा की ओर से 9 दिसंबर के बाद लिए गए सभी फैसले मान्य नहीं होंगे। अदालत के आज के फैसले से कांग्रेस पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल,
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो मायना है वो ये है कि 15 दिसंबर को जो भी स्थिति थी वो आज रहे, मतलब के 15 दिसंबर का सूरज सूरज रहेगा। और निश्चित रूप से इसका मतलब यह है कि नबम टुकी जो सरकार का कमाल समाने हुए थे वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और उसके बाद जैसे भी हाउस चलेगा उसका फैसला तो हाउस ही करेगा।
कपिल सिब्बल के अनुसार आज के फैसले से राज्यपालों को ये सबक मिला है कि वो निष्पक्ष रहें। अब कांग्रेस पार्टी ने 3 अहम मांगे रखी हैं। ये मांगे क्या हैं? कपिल सिब्बल कहते हैं,
गवर्नर को बर्खास्त किया जाए। दूसरी हम मांग करते हैं, जो भी केंद्र के मंत्री इस निर्णय में शामिल थे वो अपनी सफाई दें और अपोलोजाइज भी करें। और तीसरी मांग हम ये करते हैं, जिसकी अभी तक जांच नहीं हुई, कि इस बीच जब उन्होंने प्रयास किया कि सरकार को गिराना है तो एक बिजनेसमैन के साथ बातचीत हुई, जो टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन हमने कोर्ट में भी पेश की, और बिजनेसमैन ने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि बीजेपी के पक्ष में आएंगे या सरकार को तोड़ेंगे उनको भी पैसे की जरूरत होगी, तो आप इंतजाम कर दो।
बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों का खंडन किया है। उनके प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा कहते हैं,
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं हम उनको पूरी तरह से खारिज करते हैं। जो कोर्ट का फैसला आया है उस कोर्ट के फैसले को हम लोग स्टडी करेंगे। बहुमत किसके पास है ये असेंबली के अंदर फ्लोर टेस्ट में ही पता लगेगा।
अंग्रेजी अखबार असम ट्रिब्यून के एक वरिष्ठ पत्रकार कल्याण बरुआ ने कहा कि उत्तराखंड के बाद मोदी सरकार को ये दूसरा बड़ा झटका मिला है।
मोदी सरकार के लिए खास करके ये दूसरा बड़ा झटका है उत्तराखंड जजमेंट के बाद। उत्तराखंड में भी कांग्रेस सरकार को रेस्टोर कर दिया जहां प्रेसिडेंट रूल लगाया था यहां पे, लेकिन अरुणाचल में एक डिफरेंस है। कालिकोपुल सरकार जब आई उसके बाद उन्होंने असेंबली में अपना मेजोरिटी प्रूव कर दिया था, जो उत्तराखंड में नहीं हुआ था। उत्तराखंड में जब मेजोरिटी प्रूव हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ था।
आज के फैसले से अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक अनिश्चितता खत्म नहीं होने वाली है। कल्याण बरुआ कहते हैं कि मुख्यमंत्री नाबाम तुकी को जल्द ही बहुमत सिद्ध करना होगा और उनके पास बहुमत है नहीं। राज्य में तब राजनीतिक संकट गहरा हो गया था जब 60 सदस्यीय विधानसभा में सत्ता पक्ष कांग्रेस के 47 में से 21 विधायकों ने मुख्यमंत्री नाबाम तुकी को हटाने की मांग की थी। राज्य में जारी राजनीतिक गतिरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने 24 जनवरी को वहां राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी। इसे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कई हफ्ते चली राजनीतिक उठापटक के बाद राज्यपाल राजखोवा ने कांग्रेस के बागी गुट के नेता कलीखोपुल को 19 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। कलीखो को भाजपा के 11 विधायकों का समर्थन हासिल था। फैसले के बाद कलीखोपुल ने कहा कि अदालतें सरकार नहीं चलाती, सरकार चलाने के लिए नंबर होने चाहिए और उनके पास विधायकों की संख्या ज्यादा है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बहाल होगी कांग्रेस की सरकार और राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। भारत प्रशासित कश्मीर में आज 5वें दिन भी कर्फ्यू बंद और नाकाबंदी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त और रोजमर्रा की गतिविधियां ठप रहीं। इस बीच शहीद दिवस के दिन रैली का आह्वान करने वाले अलगाववादियों को गिरफ्तार किया गया। अलगाववादियों ने कल पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर समेत पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया, जबकि जुम्मे को भी घाटी में हड़ताल की जा रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक बार फिर से लोगों से शांति बहाल की अपील की है और विपक्ष नेता उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वो पुलिस वालों को सिविल कपड़ों में अपनी रैली में ले जाने के बजाय हालात को ठीक करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करें। श्रीनगर से रियाज मसरूर ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
भारत के बंटवारे से 16 वर्ष पहले कश्मीर में डोगरा शाही के विरुद्ध भी आंदोलन चला था और 13 जुलाई 1931 को पुलिस की फायरिंग में कई कश्मीरी मारे गए थे। इस दिन को यहां की सरकार और अलगाववादी दोनों मनाते हैं, लेकिन सरकार अलगाववादियों को इस दिन मार्च करने की अनुमति नहीं देती। आज चूंकि पहले से ही घाटी तनावग्रस्त थी, सरकार ने कर्फ्यू को और सख्त कर दिया और अलगाववादियों ने जब मार्च के लिए घर से निकलने का प्रयास किया तो इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले सईद अली गिलानी ने कहा कि बुरहान वानी बिल्कुल इसी तरह का क्रांतिकारी था जिस तरह ब्रिटिश इंडिया में भगत सिंह थे।
वो दहशतगर्द नहीं था, वो जम्मू कश्मीर के आवाम का हीरो है, बराबर उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जिन लोगों ने शहादतें दी हैं वो हिंदुस्तान की पूरी कौम के हीरो बने हैं और उनको हीरो की हैसियत से एहतराम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मजार शहदा पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया, लेकिन अपोजिशन के नेता उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सरकारी गाड़ियों और पुलिस कर्मचारियों का इस्तेमाल करके रैली को स्टेज किया है।
अस्पतालों से यही खबरें आ रही हैं कि जो जरूरी दवाइयां हैं उनकी कमी है। हम गुजारिश करेंगे कि जिन जहाज़ों में वो फोर्सेज ला रहे हैं उन जहाज़ों में अगर दवाई और इस तरह की चीज़ें लाएँ तो मुझे डॉक्टरों की, अब हमारे डॉक्टर भी थक गए हैं, कितने वो घंटे जो है काम कर पाएंगे। सर्जरीज जो हैं हमारे ओटीज जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। हमारी मौतबाना गुजारिश होगी कि ये बसों में लोगों को लाना ले जाना, इससे हालात दोबारा साजगार नहीं होंगे।
इस बीच अस्पतालों में भर्ती हजार से अधिक घायल लोगों को जबरदस्त कठिनाइयों का सामना है। अक्सर घायल लोगों को गोलियां लगी हैं और सर्जरी के लिए जरूरी और महंगी दवाइयां अभी तक अस्पतालों में नहीं पहुंची हैं। कुछ लोग अस्पतालों में जाकर दवाइयों का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे ही एक एक्टिविस्ट फहद ने बताया,
अगर तो यहाँ पे हमें क्लियर स्टेटमेंट मिलता है कि दवाइयाँ मिसिंग है, यहाँ पर वैली में ही नहीं, वैली के बाहर जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो यहाँ पर दवाइयों का फ्लड कर देंगे। यहाँ पर कोई बगैर दवाई के नहीं रहेगा, सबके लिए जरूरी दवाइयाँ पहुँचेंगी, सब इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाएंगे जल्दी से।
कश्मीर में शांति बहाली के लिए कल ही नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद राज्य सरकार को हर प्रकार की मदद देने की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार लोगों से अपील की है कि वो इन्हें राज्य में प्रगति का दौर लाने का मौका दें।
हमारा मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, यहाँ के हमारे मजहबी रहनुमा है, सबसे अपील करना चाहती हूँ कि हमें जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने में, लोगों की जानें बचाने में हमारी मदद करें। हम इस जम्मू कश्मीर को मिलके इस मुसीबत से, इस खून खराबे से बाहर निकालना चाहते हैं और इंशाल्लाह जरूर निकालेंगे।
गौरतलब है कि 8 जुलाई की शाम को जब पुलिस ने दावा किया कि 6 साल से सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी को एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया, तो दक्षिणी कश्मीर के सभी 4 जिलों अनंतनाग, कोलगाम, पुलवामा और शोपियान में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ कई मुठभेड़ों में अब तक 36 लोग मारे गए जबकि 1500 के करीब घायल हैं। अलगाववादियों ने कल पाकिस्तान और भारत प्रशासित कश्मीर के दोनों क्षेत्रों में बंद का आह्वान किया है और घोषणा की है कि घाटी में जुमे को भी बंद होगा। सरकार ने कर्फ्यू में ढील देने का अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। बांग्लादेश हमले के बाद चर्चा में आए विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के भारत न आने पर उनके वकील का कहना है कि इसकी फिलहाल कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश के ढाका के कैफे में हमला हुआ था और इसके बाद बांग्लादेश की सरकार का कहना था कि इस हमले को अंजाम देने वालों में से कुछ चरमपंथी डॉक्टर जाकिर नाइक से प्रेरित थे। इसके बाद से ही डॉक्टर नाइक के भाषणों के अंश TV पर प्रसारित किए गए जिसमें वो कथित तौर पर चरमपंथ को बढ़ाने वाली आपत्तिजनक बातें कहते नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने जाकिर नाइक के वकील मुबीन सोलकर से संपर्क साधा और पूछा, जाकिर नाइक सामने आकर अपनी बात क्यों नहीं रखना चाहते?
नहीं, सामने नहीं आना चाहते का इसका मतलब हम नहीं समझ पा रहे। उनको कोई एजेंसी ने आज तक समन्स नहीं भेजा है, उनको कोई कोर्ट में वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो उनको सामने आने की कोई जरूरत नहीं इस वक्त। एक तो पहले ये समझना चाहिए कि वो एक NRI है, मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर वो इंडिया में रहते भी नहीं है और उनके जो ओरिजिनल स्केड्यूल के मुताबिक वो इंडिया में जो है नेक्स्ट ईयर आने वाले थे, लेकिन जब ये जो ढाका टेरर अटैक के बाद में जब ये रिपोर्ट्स आने लगी खास करके इंडियन मीडिया में और उनको जो जब लिंक किया जा रहा था उनसे वहाँ के जो है आतंकवादियों से, तो उसके बाद जो है उन्होंने ये तय किया कि वो इंडिया में एक दिन के लिए आ जाए अपना स्केड्यूल चेंज करके और जो है प्रेस से जो है मुखातिब हो और जो भी उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए वो दे। लेकिन इस दौरान वो इंडिया में आने के पहले जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है प्रोब ऑर्डर किया, 9 टीम्स बनाए गए ऐसा पेपर में आया, तो हमने ये सोचा कि अगर जब एजेंसी प्रोब कर रही है तो प्रोब करने दो, बिकॉज जो है अभी तक जो प्रेस रिपोर्ट्स आ रहे थे उसमें जो है डॉक्टर जाकिर के कंटेंट्स जो है स्पीचेस के इनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जा रहा था, पार्टली कोट किया जा रहा था, उस वजह से जो है ऐसा लग रहा था कि वो जो है इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस है।
अगर आप मीडिया में उनके तमाम तरीके के बयान और वीडियो देखेंगे तो उसमें तो वो बातें सारी कह रहे हैं जिसपे लोगों को दिक्कत है, आपत्ति है।
हाँ, तो वो बातें जो कह रहे हैं, जो अभी जो चीज यूज हो रही है वो उनके इंटरनेट से लिए हुए कुछ स्पीचेस है जो पूरे कंप्लीट भी नहीं है, कहीं जो है वो डॉक्टर्ड स्पीचेस है, पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर उनके स्पीचेस को देखा जाएगा तो कोई भी स्पीच जो है वो आपको ये नहीं बताएगी कि वो टेररिज्म को प्रमोट करती है या डॉक्टर जाकिर जो है वो टेररिज्म को किसी तरीके से इंस्पायर करते हैं। तो ये जो है मटेरियल जो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो प्रोब एजेंसीज है उनको इसकी जांच करने के लिए कहा गया, और डॉक्टर जाकिर के जो है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उनके स्पीचेस अवेलेबल है। तो कोई पर्सनल इंटरोगेशन डॉक्टर जाकिर का जरूरी नहीं है, इस वजह से एजेंसीज ने उनको समन भी नहीं किया, ना उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, ना कोई जो है रिटन जो है क्वेश्चनर दिया है, तो फिर उनको यहाँ इंडिया आने की जरूरत भी नहीं है इस वक्त, और इस वजह से वो नहीं आ रहे। अदरवाइज उनको कोई ऐसी कोई रीजन नहीं है उनको जो है इंडिया में न आने के लिए, एंड ही हैज प्रोसीडेड विद हिज ओरिजिनल शेड्यूल।
तो ये बताइए कि आज इस तरह की तमाम खबरें थी कि उनको अपनी प्रेस ब्रीफिंग के लिए तमाम जो बम्बई के होटल्स हैं उनमें जगह नहीं मिल रही, इसमें कितना दम है?
कुछ होटल्स को जो है अप्रोच किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने के लिए, जो हम लोग ने बुकिंग की थी वो वर्क पे सेंटर की बुकिंग थी कल की, वो जो है उन्होंने आज फोन करके मना कर दिया उस जगह को देने से, ये कहते हुए कि वहां पर एक उनको पावर मेंटेनेंस इश्यू आ गया है जो गलत है, बिकॉज वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है जहां पर जो है इंटरनेशनल ग्लोबल इवेंट्स साल भर होते रहते हैं, और उन्होंने ये रीजन देकर के आज जो मना किया है वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग अभी दूसरी वेन्यूज की तलाश में है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जाकिर खुद मुखातिब होंगे या फिर कैसे?
अगर हमको वेन्यू मिल जाता है देन वील प्रोसीड विद द प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस वक्त जब भी हमको जिस वक्त का स्लॉट मिले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उस वक्त डॉक्टर जाकिर जो है वो ऑलरेडी अपने टूर पे है, वो अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं स्काइप वगैरह पे ये हमको अभी पता नहीं है, सो वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि वो जो है प्रेस को एड्रेस करेंगे या नहीं करेंगे।
डॉक्टर जाकिर नाइक के वकील मुबीन सोलकर बता रहे थे कि आखिरकार क्यों जाकिर नाइक भारत नहीं आना चाहते। गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच का दावा है कि साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के लिए, ये घटना जो फरवरी 2002 में गोधरा में हुई थी, इस आग लगने की घटना के लिए जो लोग पेट्रोल लाए थे और जिन्होंने आग लगाई उसके एक प्रमुख अभियुक्त को उन्होंने गिरफ्तार किया है। मैंने बात की गुजरात में मौजूद अपने सहयोगी अंकुर जैन से और पूछा कि ये कौन है और पुलिस ने इन्हें कहां से गिरफ्तार किया है।
मोनल जी, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कल देर शाम मालेगांव से इमरान बटुक को गिरफ्तार किया है। इनकी उम्र अभी 36 साल है और 2002 गोधरा ट्रेन हत्याकांड जो हुआ था तब ये 22 साल के थे, और जो दूसरी चार्जशीट निकली थी इन्वेस्टिगेटर्स की गोधरा ट्रेन हत्याकांड में उसमें इन्हें मेन अभियुक्त बताया गया था, और इसे कल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मालेगांव से गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद पुलिस का कहना है कि ये पिछले 3 महीने से पुलिस के सर्विलेंस में था और ये मालेगांव में एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहा था, जहां पे एक मालेगांव की एक खनन की कंपनी है उसमें बतौर असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा था, और वहीं इसने शादी भी की थी और इसकी 3 बेटियां हैं, और इसकी जानकारी इतने दिनों तक नहीं मिल पाई थी क्योंकि इसने अपना जो परिवार है गोधरा में उनसे संपर्क इन दिनों बीच में नहीं रखा था।
अंकुर, कुछ महीने पहले एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में।
बिल्कुल, उसी अभियुक्त के दौरान अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का दावा है कि इसकी भी इमरान की भी लीड मिली थी, और इनका दावा है कि इमरान जो है जो चार्जशीट में कहा गया है गोधरा ट्रेन हत्याकांड में जो साबरमती एक्सप्रेस S6 कोच को जलाने की वारदात हुई थी उसमें जो पेट्रोल लाया गया था, तो पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि वो पेट्रोल लाने में ये इमरान शामिल था, और वहीं वो डब्बे को जलाने के लिए जो लोग मौजूद थे गोधरा में उनमें से एक इमरान था।
गोधरा कांड का मुख्य अभियुक्त 14 साल बाद गिरफ्तार, गुजरात पुलिस का दावा। सीडी और डीवीडी बेचकर अपना गुजारा चलाने वाले 23 साल के काले अमरीकी नौजवान एल्टन स्टर्लिंग को जमीन पर गिराकर गोरे पुलिस वालों ने जिस तरह से गोली मारी उसके वीडियो ने दुनिया भर में लोगों को हिला दिया। अमरीका में काले और गोरों के बीच की दरार को एक बार फिर से उधेड़ कर रख दिया। जो अमरीका दुनिया भर में बराबरी, गैर नस्लवाद और जनतंत्र का झंडा बुलंद करने की बात कहता है, आज तक अपने भीतर फैले नस्लवाद का कोई हल नहीं खोज पाया। आज का दुनिया जहान अमरीका में रंग भेद ही है। प्रस्तुत है निखिल झा, निखिल रंजन प्रस्तुत कर रहे हैं दुनिया जहान।
अमेरिका के तमाम शहरों और छोटे कस्बों में अफ्रीकी मूल के काले अमेरिकी सड़कों पर उतर आए हैं। मिनोसेटा में फिलेंडो कास्टिले और बेटन रूज में एंटन स्टर्लिंग को गोली मारे जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और उसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। इस बार प्रतिहिंसा की लहर को नहीं रोका जा सका। डैलस में एक प्रदर्शन के दौरान 5 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि एक काले राइफलधारी ने निशाना साधकर उन पर गोलियां चलाई।
What was his crime? Why is he being arrested?
What are you doing? Why is he being arrested?
Why is he being arrested right now?
दुनिया को बराबरी, लोकतंत्र और बहुसंस्कृति का पाठ पढ़ाने वाले अमरीकी समाज में दरारें गहराई तक पड़ी हुई हैं। हालांकि 8 साल पहले बराक ओबामा अमरीका के पहले काले राष्ट्रपति चुने गए, पर यह सिर्फ काले समुदाय की सांकेतिक विजय ही साबित हुई। अमरीका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाने वाले डॉक्टर मुख्तदर खान,
जब सदर ओबामा जीते थे, जो अमेरिकन पब्लिक के जो मूड था वो बहुत ही सदर जॉर्ज बुश और डिक चेनी और जो नियोकॉन्स की जो 8 साल की गवर्नेंस थी उसके खिलाफ एक किस्म से बैकलैश था। एक प्रोग्रेसिव अफ्रीकन अमेरिकन लीडर को अमेरिकन पब्लिक ने इलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने समझ लगा कि इसके वजह से ये हुआ कि रेसिज्म खत्म हो गई। लेकिन जो सदर ओबामा की जो पर्सनैलिटी थी उसके वजह से एक अमेरिका की सियासत में एक नई चीज हुई कि उन्होंने एक नया कोलिशन फॉर्म किया, तकरीबन 90% अफ्रीकन अमेरिकन वोट हासिल किए और उससे हटकर यूथ की वोट उनको बहुत ज्यादा मिली। दूसरी चीज ये है कि सदर ओबामा का जो मिडिल नेम है वो हुसैन है, बराक हुसैन ओबामा, और फिर ये 9/11 और जो अमेरिका में इस्लामोफोबिया है और मुसलमानों की तरफ से जो हमले वगैरह चलते रहते हैं यहाँ पर, उससे जो एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट चंद लोगों में है उनके वजह से ये बात फैलने लगी कि सदर ओबामा एक मुसलमान प्रेसिडेंट है और वो केन्या में से आए हैं। एक ऐसा फीलिंग आ गई है ट्रेडिशनल अमेरिका में, यानी कि हमारा मुल्क हमारे हाथों से चला जा रहा है। सदर ओबामा के इलेक्ट होने से रेसिज्म खत्म होने के बजाय फिर से जाग उठा।
काले और गोरे लोगों के बीच की खाई इतनी गहरी है कि राष्ट्रपति ओबामा को इससे इनकार करना पड़ा, पर ऐसा कहने की जरूरत ही शायद तब आती है जब विभाजन नजर आने लगा हो। इसकी एक बानगी तो ओबामा के उस भाषण में ही दिखी जब वो एक आधिकारिक रिपोर्ट का हवाला देकर बता रहे थे,
African Americans are 30% more likely than whites to be pulled over.
गोरे लोगों की तुलना में अफ्रीकी अमरीकियों को उठा लिए जाने की आशंका 30% ज्यादा है। पिछले साल गोरों की तुलना में अफ्रीकी अमरीकियों को गोली मारने की तादाद 2 गुना थी। एक ही अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए गोरे लोगों की तुलना में कालों को 10% ज्यादा समय जेल में गुजारना पड़ता है।
अफ्रीकी मूल के लोगों को 16वीं 17वीं शताब्दी में गुलाम बनाकर अमरीका लाया गया। अब्राहम लिंकन गुलामों की मुक्ति के मसीहा बने और सदियों तक एक एक इंच लड़कर काले लोगों ने समाज में इज्जत और बराबरी का मकाम हासिल किया। अफ्रीकी अमरीकी समुदाय का ये संघर्ष आत्मसम्मान, बराबरी, लोकतंत्र और मानवाधिकार की लड़ाई थी। 1950 और 60 के दशक में इस लड़ाई को स्वर देने वाले काले नेताओं में मार्टिन लूथर किंग जूनियर आगे थे।
We read one day, we hold these truths to be self-evident.
I want a ticket to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose, maybe we'll make something. Me, myself, got nothing to prove.
50 के दशक में पॉल रॉबसन से लेकर 90 के दशक में ट्रेसी चैपमैन जैसी गायिकाओं ने काले लोगों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को अपने संगीत के जरिए आवाज दी थी। अमेरिका में कोई भी आदमी दुकान से आटे दाल की तरह बंदूक खरीद सकता है। 32 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में 27 करोड़ वैध हथियार नागरिकों के पास हैं। CIA और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में 12,000 से ज्यादा लोग गोलीबारी की घटनाओं में मारे गए। गार्डियन अखबार की एक रिपोर्ट बताती है कि 2015 में गोरे और हिस्पानियाई लोगों की तुलना में 2 गुना काले लोग अमेरिका में मारे गए। जिन अफ्रीकी अमरीकियों को मारा गया उनमें 25% निहत्थे थे, जबकि गोरे लोगों के लिए ये आंकड़ा 17% था। लेकिन जिस तरह पिछले हफ्ते डैलस में एक राइफलधारी काले नौजवान ने निशाना साधकर 5 गोरे पुलिस वालों की हत्या की, वैसा उदाहरण अमेरिका में शायद नहीं मिलता। क्या ये ब्लैक राइजिंग या काले लोगों का विद्रोह है? मुख्तदर खान,
इस साल में तकरीबन 200 दिन में 200 से ज्यादा मैथ शूटिंग्स हुए हैं अमेरिका। एक शूटिंग में अगर 3 से अधिक लोग मारे जाते हैं तो उसको मैथ शूटिंग कर, तकरीबन 500 लोग मारे गए। इसमें ज्यादातर मैथ शूटर्स व्हाइट लोग होते हैं। तो इससे आपको नहीं लगता कि वाइट सोसाइटी रिबेल कर रही है? एक जो मैस शूटिंग एक अफ्रीकन अमेरिकन ने कर दिया तो उसको लोगों को ऐसा लग रहा है कि रिबेलियन हो रहा है। सवाल तो ये उठता है कि इस मुल्क में जिसमें बंदूकें ज्यादा है लोग कम है, पिछले कई सालों से नजर आ रहा है कि बार बार अमेरिका की पुलिस बड़ी सख्ती से अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ रिएक्ट करती है। एक एपिसोड हुआ है जिसमें एक अफ्रीकन अमेरिकन फौजी एक्स सोल्जर ने 11 पुलिस वालों को शूट कर दिया जिसमें से 5 हलाक हो चुके और 6। अब ये और बात है कि अगर ऐसे 5-6 एपिसोड और हो जाते हैं तो शायद आप कह सकते हैं कि ये मूवमेंट है या एक ट्रेंड है।
अमरीकी जेलों में बंद लोगों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो सजा काट रहे करीब 38% लोग काले या अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। नशा, बेरोजगारी, अपराध और परिवारों के बिखराव के कारण बहुत से काले नौजवान समाज में अपनी जगह नहीं बना पाते।
देखिए, अमेरिका में एक चीज है जिसे कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म। तो उसके वजह से क्या होता है कि पब्लिक में डिस्पैरिटी है। मिसाल के तौर पे अमेरिका का जो पॉपुलेशन है उसमें से 13% से लेकर 14% तक वो अफ्रीकन अमेरिकन है और 60% पॉपुलेशन वाइट है। लेकिन आपको पता है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन की एवरेज दौलत है तकरीबन 1400-1500 डॉलर और जो गोरों की एवरेज वेल्थ है वो तकरीबन लाखों डॉलर में। तो जो वेल्थ गैप है वो बहुत है और वो बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं जिस स्टेट में रहता हूँ डेलावेयर में, स्टेट की आबादी में 20% काले हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन में सिर्फ 4% से लेकर 5% तक। इस तरह से अमेरिका की पुलिस फोर्स में, अमेरिका के लॉ एनफोर्समेंट में, जजेस में वगैरह वगैरह, कांग्रेस में ले लें आप, उतना बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेनेट है वो बहुत अच्छा इंडिकेट करता है क्योंकि उसकी टोटल स्ट्रेंथ 100 है जिसमें से सिर्फ 2 काले हैं।
1940-50 के दशक से तुलना की जाए तो हालात बहुत सुधरे हैं। तब तो अमरीकी कार्टून भी नस्ल भेदी हुआ करते थे। बच्चों के लिए बनी इन कार्टून फिल्मों में अक्सर बेडौल, आलसी, लापरवाह और उटपटांग हरकत करने वाले किरदार काले होते थे। एक उदाहरण कलाकार जॉन क्रो का भी है जो गोरे होने पर भी काले बनकर अपनी कॉमेडी दिखाते थे। नस्ल भेद की सोच इन कृतियों के रंग का आधार बनी या इनकी वजह से नस्ल भेद को फलने फूलने का मौका मिला, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन एक ही दिन में 5 पुलिस वालों की हत्या बता रही है कि अमरीकी नस्ल भेद उस खतरनाक मोड़ पर है जहां उसे नहीं होना चाहिए। काले होकर भी ओबामा 8 सालों में इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर पाए, शायद उनके उत्तराधिकारी कुछ कर सके। निखिल रंजन, BBC दिल्ली।
नस्ल भेद पर ये दुनिया जहां सुबह कार्यक्रम में, यानी कि विश्व भारती कार्यक्रम में आप दोबारा सुन पाएंगे। अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र में हम आपको सुनाएंगे हमारी जो विशेष श्रृंखला मेडिकल नेग्लिजेंस पर चल रही है उसकी तीसरी कड़ी। क्या आप जानते हैं अस्पताल जाने से पहले आपके अधिकार क्या हैं?
इमरजेंसी में फर्स्ट एड मिलने का मानवीय अधिकार हर एक पेशेंट को है। फर्स्ट एड मैं बोल रहा हूँ, स्टेबिलाइज नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सपोज मुझे हार्ट अटैक आया और मैं बाजू में कोई जनरल प्रैक्टिशनर है या गायनेकोलॉजिस्ट है या ऑर्थोपेडिशियन है तो उसके पास मैं गया तो वो तो कोई मुझे स्टेबिलाइज नहीं कर पाता। लेकिन पहले बार वो एंटी एंजाइनल टैबलेट मेरे टंग के नीचे रखे, कुछ मॉर्फिन जैसा इंजेक्शन मेरे पेन के लिए दे, कुछ IV सलाइन मुझे लगाए, तो ये जो फर्स्ट एड है वो देने की जिम्मेदारी वो डॉक्टर पे है। वो टाइम में पैसा रखो और बाद में फर्स्ट एड देंगे, ये अस्पताल नहीं कर सकता।
तो घटना चक्र में हम अपनी विशेष श्रृंखला आपको सुनाएंगे और अब कार्यक्रम में इससे पहले आपसे विदा ले मुख्य समाचार फिर से सुन लेते हैं।
BBC समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश दिया है जिसे केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए धक्का माना जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन आज अपना पद छोड़ रहे हैं जिसके बाद टेरिजा मे देश की नई प्रधानमंत्री होंगी और चीन ने चेतावनी दी है कि वो साउथ चाइना सी में एयर डिफेंस जोन बना सकता है। चीन का ये बयान इस क्षेत्र में चीन के दावों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद आया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोठिया। डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र लेकर हम फिर से उपस्थित होने वाले हैं। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।